कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 12वीं पुस्तक दूसरा राजा नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इन अध्ययनों से अवश्य आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा होगा। इससे पहले कि हम आज का अध्ययन आरंभ करें, आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है।
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है,
कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है,
कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, मुझ में
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूल है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं
भूल
है,
कभी नहीं भूल है, कभी नहीं भूल है,
कभी नहीं भूल है, कभी नहीं
जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है,
जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है,
दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है,
दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है,
सारी बीमारियां यीशु के अधीन,
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा फिर से एक बार नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन भाई बहनों का जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब बाइबल की पुस्तक में से दूसरे राजाओं की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि सन्हेरीब की सेना का सर्वनाश हुआ और वह घर लौटा जहां उसके पुत्रों ने उसे मार डाला, और इधर यजकिया को कैंसर हो गया और यशायाह ने उसे कूच करने का समाचार सुना दिया, परंतु उसके गिड़गिड़ाने पर परमेश्वर ने उसे 15 वर्ष जीवन दान दे दिया। इन 15 वर्षों में उसने मूर्खता ही के काम किए और घमंड से फूल गया। तब हम देखते हैं कि चंगाई पर बाबुल के दूत उसे बधाई देने के लिए आए तो उसने उन्हें अपना सारा खजाना दिखा दिया, जिसके कारण भविष्य में बाबुल ने यहूदा पर आक्रमण किया और उसके मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मनश्शे महादुष्ट राजा बना और राज्य किया। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 21 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, जिसमें हम देखेंगे यहूदा का राजा मनश्शे। अध्याय 20 के बाद अध्याय 21 बड़ा ही पतित अध्याय है, परंतु इसमें भी हमारे लिए एक महान शिक्षा है। दाऊद के बाद हिजकिया ही एक अति उत्तम राजा हुआ था और उसकी तुलना में दाऊद को छोड़ अन्य कोई राजा न हुआ था। वह पिता होने में भी दाऊद के तुल्य ही था। दोनों ही अच्छे पिता नहीं थे। हिजकिया एक ऐसे राजा का पिता था जो दक्षिणी राज्य में सबसे अधिक दुष्ट राजा था। मनुष्य के बारे में पढ़ने पर पता चलता है और बहुत दुख भी होता है कि वह हिजकिया का पुत्र होकर ऐसा निकला। मेरे विचार में परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति शकीना मनुष्य के राज्य में ही स्वर्ग लौट गई थी, परंतु मैं इसे सिद्ध नहीं कर सकता। जहां तक हम समझ सकते हैं, शकीना अर्थात परमेश्वर की महिमा हिजकिया के राज्य में मंदिर में ही थी, क्योंकि ऐसी कोई घटना मनुष्य के बाद नहीं घटी कि शकीना प्रस्थान करती। मित्रों, जब परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर से चली गई तब वह स्थान उजाड़ हो गया। परमेश्वर द्वारा मनुष्यों का परित्याग दिखता है। मनुष्य के जीवन को देखने पर हमें पता चलेगा कि उसके मन में मंदिर और परमेश्वर के बातों के लिए अत्यधिक घृणा भरी थी। मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं मनुष्य के पाप। दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, जब मनुष्य राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम हेप्सिबा था। मेरे मित्रों, मनुष्य जब सिंहासन पर बैठा तब वह सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष का था। वह बड़ा नीच मनुष्य था। किसी ने उसके बारे में कहा, वह अभी बच्चा है, बड़ा होकर ठीक हो जाएगा, परंतु वह नहीं सुधरा। वह अधिकाधिक दुष्ट होता चला गया। परमेश्वर ने उसे मन परिवर्तन के अनेक अवसर दिए। उसने 25 वर्ष राज्य किया। दूसरे इतिहास की पुस्तक में हम देखेंगे कि अंत में उसने पश्चाताप किया। परमेश्वर धीरजवंत है एवं सहनशील है। वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो। मेरे प्रियो, मनुष्य की माता का नाम भी दिया गया है हेप्सिबा। उसे अपने पुत्र का उत्तरदायी होना होगा। यदि उसमें कोई अच्छाई हो तो उसका श्रेय उसी को मिलेगा। वह एक अच्छी माता रही होगी और मुझे समझ में नहीं आता कि उसने मनुष्य का पालन कैसे किया था। उसने दुष्टता की सीमा पार कर दी थी, अर्थात कहें कि उसने हद कर दी थी, और राष्ट्र की जो हानि उसने की वह कभी पूरी नहीं की जा सकती थी। मित्रों, हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं के पुस्तक 21 अध्याय के 2 पद में लिखा है, उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इसराइलियों के सामने देश से निकाल दिया था वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। मनुष्य उस देश की उन अन्य जातियों की तुल्य दुष्ट था जिन्हें परमेश्वर ने अपने प्रजा को वहां लाने से पूर्व नाश किया था। तब हम आगे पढ़ेंगे दूसरे राजाओं के पुस्तक 21 अध्याय उसके 3 पद में, उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिया ने नाश किया था फिर बनाया और इसराइल के राजा आहाब की नाई बाल के लिए वेदियां और एक अशेरा बनवाई और आकाश के कुलगण को दंडवत और उनकी उपासना करता रहा। मेरे प्रिय मित्रों, आपको स्मरण होगा कि हिजकिया ने अन्य जातियों के पूजा स्थल उजाड़ दिए थे और उसके राज्य में आंशिक धार्मिक जागृति आई थी। उसका संपूर्ण सुधार कार्य अब व्यर्थ हुआ क्योंकि मनुष्य ने बाल के लिए फिर से वेदियां बनाई और उसने आकाश के सारे गणों की उपासना की और उनकी सेवा की, अर्थात उसने सूरज, चांद, सितारे और सब स्वर्गीय गण जिन्हें यूनानी अपोलो, डायना आदि कहते थे। मनुष्य वास्तव में एक दुष्ट जन था। मित्रों, अब कोई कहेगा हम तो इन सब से बहुत दूर हैं। जी नहीं, हम इनसे दूर नहीं हैं। हम ज्योतिष विद्या को फिर से उठता हुआ देख रहे हैं। हम सभ्य जन भी राशि फलों पर निर्भर करते हैं। बहुत से लोग आज भी आकाश के गण की पूजा करते हैं। वे नहीं जानते कि वे परमेश्वर की रचना है, परंतु उसको पूछते हैं जो उन्हें कुछ नहीं दे सकता। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पढ़ते हैं, और उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा, वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के कुल गण के लिए वेदियां बनाई। मेरे प्रियो, मनुष्य ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को चुनौती दी। उसने परमेश्वर के भवन में भी देवी देवताओं की वेदियां बनाई, जहां परमेश्वर ने कहा था, यहां मैं अपना नाम स्थापित करूंगा, लेकिन उसने वहां भी वेदियां बना डाली। अब हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय के 6 पद में, फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह क्रोधित होता था। मेरे प्रिय मित्रों, उसने अपने ही पुत्र को आग में चलवाया। यह नरबलि थी। वे एक मूर्ति को आग में लाल करके उसकी बाहों में अपने शिशु को रख देते थे। यह भयानक एवं पीड़ात्मक और शैतानी मूर्ति पूजा थी। आज भी कहीं कहीं पर इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, और अशेरा की जो मूरत उसने खुदवाई उसको उसने उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था कि इस भवन में और यरूशलेम में, जिसको मैंने इसराइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, मैं सदैव अपना नाम रखूंगा। और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करें, तो मैं ऐसा न करूंगा कि जो देश मैंने इसराइल के पुरखाओं को दिया था उससे वे फिर निकलकर मारे मारे फिरें। मेरे मित्रों, उस समय तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, परंतु वे बाबुल यात्रा की तैयारी में थे। वे बाबुल की बंधुआई में जाने वाले थे, अर्थात गुलामी में, क्योंकि उस देश में रहने की एक उनके लिए एक ही शर्त थी, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना। हम दूसरे राजाओं के पुस्तक 21 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, परंतु उन्होंने न माना, वरन मनुष्य ने उनको यहां तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से विनाश किया था। मनुष्य अन्य जातियों के सदृश ही नहीं, उनसे भी अधिक दुष्ट था। उसके लिए मेरे पास एक संदेश है, परमेश्वर इसराइलियों की दुष्टता सहन नहीं करेगा, वह उन्हें देश से बाहर कर देगा। मेरे मित्रों, कई बार जब हम परमेश्वर के निकटता में आकर कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते हैं, तो निश्चय जाने कि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक के 21 अध्याय उसके 10 से 13 पद में पढ़ते हैं, इसलिए यहोवा ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा कि यहूदा के राजा मनुष्य ने जो ये घृणित काम किए और जितनी बुराइयां एमोरियों ने जो उससे पहले थे की थी, उनसे भी अधिक बुराइयां की, और यहूदियों से अपनी बनाई हुई मूर्तों की पूजा करवा के उन्हें पाप में फंसाया है। इस कारण इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुनो, मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूं कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वह बड़े सन्नाटे में आ जाएगा, और जो मापने की डोरी मैंने शोमरोन पर डाली है और जो साहुल मैंने अहाब के घराने पर लटकाया है वही यरूशलेम पर डालूंगा, और मैं यरूशलेम को ऐसा पोछूंगा जैसे कोई थाली को पोंछता है और उसे पोंछकर उलट देता है। मेरे मित्रों, जिस प्रकार परमेश्वर ने सामरिया और संपूर्ण इसराइल को दंड दिया, उसी प्रकार वह यरूशलेम और संपूर्ण यहूदा को भी दंड देगा। परमेश्वर ने कहा, यरूशलेम को ऐसा पोंछूंगा जैसा कोई थाली को पोंछता है। परमेश्वर बर्तन धोएगा। यरूशलेम उसका देश है, वह उसकी थाली है। इसराइल ने उसे गंदा कर दिया था और इसलिए परमेश्वर उसे शुद्ध करना चाहता है, अतः वह उन्हें वहां से दूर करेगा। मेरे मित्रों, आप बुद्धिमान और परिष्कृत हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि आपको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप उसकी पृथ्वी पर रहते हैं, उसकी हवा लेते हैं, सूंघते हैं, उसकी धूप का उपयोग करते हैं, उसका दिया हुआ पानी पीते हैं। आपकी देह भी तो उसी की देन है। वह कभी कभी अपनी थाली को धोता है। सदियों से राष्ट्र समय के चक्र में खंडहर बने पड़े हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? उन्होंने वही किया था जो आज हम कर रहे हैं। परमेश्वर के बिना जीवन जीना, परमेश्वर की आवश्यकता का बोध नहीं होने देना। परमेश्वर ने कहा कि वह यरूशलेम को ऐसे पहुंचेगा जैसे कोई थाली को पहुंचता है, और उसने ठीक ऐसा ही किया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय के 14 पद में पढ़ते हैं, और मैं अपने निज भाग के बचे हुओं को त्याग कर शत्रुओं के हाथ कर दूंगा, और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने कहा कि वह बचाव के प्रबंध से अपना हाथ हटा लेगा और वैरी को आने देगा ताकि उस पर वे आक्रमण करें। दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय के 16 पद में आगे लिखा है, मनुष्य ने तो न केवल वह काम करा के यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया, यहां तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। मित्रों, कोई समाज या राष्ट्र या कोई मनुष्य पाप करे तो वह एक ही क्षेत्र में पाप नहीं करता है, वह अनेक क्षेत्रों में पाप करता है। आज हमारे देश में परमेश्वर भुलाया जा चुका है। आज अव्यवस्था और हत्याएं आम बात हो चली हैं। लोग इनसे बचना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के बिना हम बच नहीं सकते हैं। हमें परमेश्वर को स्वीकार करना है, यह पहला चरण है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें और हमारे राष्ट्र को बचा सकता है। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय उसके 17 और 18 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, मनुष्य के और सब काम जो उसने किए और जो पाप उसने किए, वह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान मनुष्य अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके भवन की बारी में जो उज्जर की बारी कहलाती थी मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राजा हुआ। हम देखते हैं कि यह मनुष्य की कहानी है। कहने को कुछ भी नहीं है, बस यह कि वह दुष्ट एवं भ्रष्ट राजा था और वह मर गया। तब हम देखते हैं कि यहूदा का राजा उसका बेटा आमोन बनता है। देखें दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय उसके 19 से 22 पद में, जब आमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम मशुलेमेत था जो यत्याबा वासी हारूस की बेटी थी, और उसने अपने पिता मनुष्य की नाय वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और वह अपने पिता के समान पूरी चाल चला, और जिन मूर्तों की उपासना उसका पिता करता था उनकी वह भी उपासना करता और उन्हें दंडवत करता था, और उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और यहोवा के मार्ग पर न चला। अब देखें आमोन भी दुष्ट था, वह अपने पिता के चरण कदमों पर चला, उसने परमेश्वर का त्याग किया और परमेश्वर ने भी उसे त्याग दिया। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय के 23 पद में पढ़ते हैं, और आमोन के कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके राजा को उसी के भवन में मार डाला। मेरे प्रियो, आमोन की दुष्टता के कारण विद्रोह हुआ और वह मारा गया। हम संकट काल में वास कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आपका जीवन भी खतरे में है। यदि आप परमेश्वर से अलग हैं तो निश्चय जाने कि आप खतरे में हैं। आगे लिखा है, यहूदा का राजा योशियाह बना। दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय उसके 24 से 26 पद में हम पढ़ते हैं, तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योशियाह को उसके स्थान पर राजा किया। आमोन के और काम जो उसने किए, वह क्या यहूदा की राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं? उसे तो उज्जर के बारे में उसकी निज कब्र में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योशिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे प्रियो, यह महान राजाओं में अंतिम राजा है। योशिय्याह एक महान राजा ही नहीं था, उसके राज्य में सबसे महान धर्म सुधार भी हुआ। यहाँ पर अध्याय 21 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 22 में योशिय्याह का अच्छा राज्य के बारे में देखेंगे। अध्याय 22 और 23 में हम देखते हैं कि योशिय्याह 8 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था और 31 वर्ष तक राज्य किया। सुलेमान के बाद वही एक सर्वोत्तम राजा हुआ था और उसके राज्यकाल में महान धर्म सुधार भी हुआ, जिसकी अत्यधिक आवश्यकता थी। मेरे मित्रों, महायाजक हिल्किय्याह उसका परामर्शदाता, उसका सहायक एवं सलाहकार था। आइए हम देखें योशिय्याह का आदर्श जीवन। दूसरे राजा की किताब 22 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, जब योशिय्याह राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम यदीदा था, जो बोस्कत वासी अदाया की बेटी थी। मित्रों, ध्यान दीजिए कि कुछ राजा बाले काले में सिंहासन पर बैठे थे, वे क्यों ऐसी आयु में राज करने लगे? क्योंकि उनका पिता मारा गया था, परमेश्वर ने उसे हटा दिया। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी मार्ग पर वह भी चला और उससे न तो दाहिनी ओर और न बाईं ओर मुड़ा। मेरे प्रियो, देश में एक बार फिर सूर्योदय हुआ और ज्योति फिर चमकी। योशिय्याह सिंहासन पर बैठा, उसने महान नव जागृति अभियान चलाया जो दाऊद और सुलेमान के बाद पहली बार हुआ है। मित्रों, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे उद्धार का एकमात्र उपाय आज नव जागृति ही है। हर जगह भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अव्यवस्था पाए जाते हैं। यौनाचार, शराब, नशा, अश्लील साहित्य, अपवाद और उपद्रव का राज्य है। नव जागृति के बिना क्रांति घूर रही है, समाजवाद का बोलबाला है, कलीसियाओं में ईश्वर त्याग है, कलीसिया स्वतंत्र विचारों के नियंत्रण में है, एवंजेलिकल क्षेत्रों में भी परमेश्वर के वचन का परित्याग है, प्रचार मंत्र पर नास्तिक चढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, विश्वासियों को जो पहली बात समझना है वह है नव जागृति, व्यक्तिगत एवं वैतिक। मेरे विचार में नव जागृति कभी सामूहिक नहीं रही है। हमें आलोचक अगुओं के स्थान पर ऐसे अगुए चाहिए जो कहें, मैं गलत हूँ, मुझे परमेश्वर के साथ संबंध सुधारने हैं। जी हाँ, यह एक विचित्र बात है और हमारा राष्ट्र डर जाएगा, परंतु हमें इसकी आवश्यकता है। योशिय्याह ने राजा होकर भी वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। नव जागृति उसी से आरंभ हुई। हम देखते हैं मंदिर का पुनरुद्वार। दूसरे राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, अपने राज्य के 18वें वर्ष में राजा योशिय्याह ने असल्याह के पुत्र शापान मंत्री को, जो मशुल्लाम का पोता था, यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा कि हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर कह कि जो चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है और द्वारपालों ने प्रजा से इकट्ठी की है। मित्रों, यहाँ पर इस बात पर ध्यान दें कि दूसरा अच्छा काम योशिय्याह ने किया है वह था मंदिर का पुनरुद्वार। स्पष्ट है कि योशिय्याह के सिंहासन पर बैठने के समय मंदिर एक प्रकार का गोदाम सा बना हुआ था। हम आगे पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक में 22 अध्याय उसके 5 और 6 पद में, उसको जोड़कर उन काम करने वालों को सौंप दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिय हैं, फिर वे उसको यहोवा के भवन में काम करने वाले कारीगरों को दें, इसलिए कि उसमें जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी मरम्मत करें, अर्थात बढ़ईयों, राजों और संगत रासों को दें और भवन की मरम्मत के लिए लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में लगाएं। ध्यान दें, उसने प्रजा से कहा कि काम में लग जाएं और मंदिर का टूटा फूटा भाग को फिर से ठीक करें। आज कलीसिया बहुत कुछ मंदिर के सदृश्य है, उसमें टूट फूट को सुधार की आवश्यकता है। मैं आराधनालयों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आराधनालय तो अनेक हैं और अति सुंदर हैं। मैंने एक ऐसा आराधनालय भी देखा है जिसके बारे में मुझे बताया गया है कि उसकी निर्माण लागत 2.5 करोड़ रुपए की थी, और मुझे बताया गया कि वहां पर बहुत थोड़े लोग आराधना के लिए आते हैं। मित्रों, शाम की आराधना में भी 25 से अधिक कारें वहां नहीं खड़ी रहती है। सप्ताह के आज के दिनों में वहां अंधकार रहता था, वहां पुनरुद्धार की आवश्यकता थी। प्रियो, आज हमारी रूढ़िवादी कलिसियां भी कलह और विवादों के कारण भंग हो गई है। वे विशाल और आकर्षक हैं, परंतु क्या परमेश्वर का आत्मा वहां है? कलिसिया में गवाही नहीं है। विश्वासियों को प्रभु की गवाह देने के लिए बाहर निकलना चाहिए। मसीह की गवाही की चर्चा करके आप विश्वासियों को भयभीत कर देते हैं। हमें धार्मिक निरसता की, नकली मिठास की, शाबाशी देने की आवश्यकता नहीं है। ये काम क्लब स्वरूप कलिसिया के लिए छोड़ दें। इस काम में वे हमसे अच्छे हैं। आज हमें जिस बात की आवश्यकता है वह यह है कि कलिसियाओं का आंतरिक सुधार हो। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर पिता मुझे और आपको देख रहे हैं, चाहते हैं कि हमारी कलिसिया प्रभु के निकटता में आए। लेकिन कैसे? जब तक हम अपने जीवन को नहीं सुधारते हैं, हम उसके निकटता में नहीं आ सकते। क्यों ना आज ही हम इस बात का निर्णय लें और यशिया की तरह अपने कदम को आगे बढ़ाएं और देखें कि परमेश्वर आपके जीवन में, कलिसिया में और आपके आसपास अद्भुत कार्यों को करेंगे। मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है और आज आप निर्णय लेंगे ताकि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में और कलिसिया में आशीष के कारण ठहरें। जिस प्रकार से यशिया ने निर्णय लिया और बहुत बड़े कार्य किए, ऐसा ही आप भी अपने जीवन में निर्णय लें और परमेश्वर के लिए महिमा के कारण ठहरें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने के लायक